फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आयत 37-38 में तकब्बुर की नफ़ी है, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन में अकड़ कर मत चलो क्योंकि आप ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और ना पहाड़ों की बुलंदी को जा चपा सकते हैं, और ये सब कुछ बड़ी बुरी चीज़ें हैं, अल्लाह के रंग आपके रब के पास तो ये मकरूह हैं। अब आप देखिए कि चाल चलन आगे भी हम पढ़ेंगे जाकर सूरह फुरकान का आखिरी रुकू, जिसमें इबादुर्रहमान की चाल की सिफात बताई जाती हैं कि वो मोतदिल चाल चलते हैं, इतराते हुए अकड़ कर चलने की ममानियत है, और मुतकब्बिराना चाल को भी मना किया गया। इस पे एक हदीस है सिलसिलतु सहीहा की, वो रिवायत है 177 नंबर, और अब्दुल्ला बिन उमर उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को दिल में बड़ा समझे या अपनी चाल में तकब्बुर अख्तियार करे तो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला इस पर सख्त गुस्से में होंगे। चलिए ज़रा मुहासबा तो करें अपना, हम किस वक्त अकड़ के चलते हैं, किस वक्त हमें लगता है हम जैसा कौन, कब हम ऐसे समझाने में जाते हैं या अपनी बराते सजा कर जाते हैं, और हमारे तो कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं कि जिसके बाद जिसको देखकर लगता है कि अब हम हमारे अंदर झुकने की कोई कैफियत नहीं है। तो आज ज़रा हम अपने बॉडी पोस्चर को भी चेक करें, और ख़ास तौर पे फिर बच्चे, यंग जवान होते हुए बच्चे, अंदर बुढ़ाई आती है ना तो वो माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते। और आप देखिए ये कितने प्यारे अहकाम आते, दिल नहीं चाह रहा पूरी दुनिया इसको सुने, इस्लाम से ज़्यादा महज़्ज़ब दीन कोई नहीं, एथिक्स सिखाने वाला इस्लाम से अच्छा कोई नहीं। इसलिए आगे आखिर में इसके क्या कहा, आयत 39-44 में, कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत पर मबनी है, यानी कोई ऐसी बात नहीं कह दी गई कि जिस पे कोई अमल ना कर सके। और साथ ही इसमें कायनात के तस्बीह करने की बात करके आगे आयत 45-48 में सरदाराने कुरैश की महरूमी की बात है। अल्लाह ने इतना प्यारा नबी उनको दिया, अगर चाहते तो उससे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगियां बना लेते, लेकिन वइज़ा क़रअतल क़ुरान, अल्लाह के नबी जब कुरान पढ़ते थे तो इनको समझ ही नहीं आता था। अल्लाह कहते हैं हमने आपके और उनके बीच में एक ना नज़र आने वाला पर्दा डाल दिया, और उनके दिल जो हैं पर्दों में हैं कि वो समझते नहीं। बेसिकली इस आयत के ऊपर आपका मेरा अमल क्या होगा कि पूछिए इस वक्त भी कुरान की महफिल में दिल की क्या कैफियत है, जो सुन रही है उसको अमल के लिए सुन रही है या बस बैकग्राउंड नॉइस की तरह आवाज़ आ रही है, गुस्सा तो नहीं आ रहा इन बातों को सुनते हुए। मक्का वाले अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सुनते थे और गुस्सा करते थे। और आगे आयत 49-52 में आखरत के हवाले से तीन सवाल आता है। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामा, कहते थे क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे और गल सड़ जाएंगे हम दोबारा उठाए जाएंगे, यानी मक्का वालों के दिल में आखरत का अकीदा ख़त्म हो चुका था। हालांकि अम्बिया से ताल्लुक़ था उनका, हज़रत इब्राहिम और इस्माइल से डायरेक्ट ताल्लुक़ था, लेकिन कौमें जब बेअमल हो जाती हैं तो आखरत के बारे में उनके दिलों में बेयकीनी आ जाती है। तो ये आयात आपसे मुझसे क्या तकाजा करती हैं कि मरने के बाद जीने को हक समझिए, छोटी बड़ी बात का वहाँ हिसाब होगा, और कब्रों से हमें निकलकर सीधा मैदाने हशर में जाना पड़ेगा। फिर आयत 53-55 का टॉपिक लिखिए, कम बोलो सोच कर बोलो अच्छी बात बोलो। वक़ुल्ली वादी, और कह दीजिए मेरे बंदों को वो बात किया करो जो अच्छी हो, क्योंकि शैतान तुम्हारे दरमियान बदगुमानियाँ डाल देता है, गलत फहमियाँ डाल देता है, क्योंकि वो तो खुला दुश्मन है। क्या पता चला कि नजा मन समत, दो लफ्ज़ों की हदीस है, निजात पा गया वो जो चुप रहा। आज बहुत बोलने का भी कल्चर है, क्योंकि हर बंदे को एक्सपोजर चाहिए। आज आप देखिए बच्चा बच्चा वीडियो बना कर भेज रहा है, जिसका जो दिल करता है वो अपनी तरफ से पेश करता है, क्योंकि अब बात पता चलती है ना कितनों ने सुनी। अब 100 ने सुन ली, 1000 ने सुन ली, मैंने अपने स्टेटस पे डाल दी, वो देखो कितने लाइक्स आए, वो कितने डिसलाइक्स आए। क्यों आप लोगों में खोए रहते हैं? अल्लाह से बातें करने वालों के पास इतना वक्त नहीं होता कि दुनिया से बातें कर करके उसको चेक करते रहें। फिर इसके बाद आयत 56-57 में वसीले की बात है। पीछे भी सूरत माईदा में हम पढ़कर आए हैं, यहाँ वसीला क्या बनाओ, अपने नेक अमाल को वसीला बना लो। यहाँ लफ्ज़ जो देखिए, उलाइकल्लज़ीन यदून यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमा, کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے اچھے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں؟ ایک بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اندھیری رات میں بارش سے بچتے ہوئے غار میں گئے، تھوڑی دیر میں ایک پتھر دروازے پہ ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ پہ آ کے ٹک گیا، اب وہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے نکل نہیں پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی ایسا عمل یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاید اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب اپنے اعمال کو یاد کیا تو اللہ کی رحمت سے پتھر ہٹ گیا۔ تو آپ کی نیکیاں آپ کے رستے کے پتھروں کو ہٹا سکتی ہیں، اصل بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملے کو ڈال دیں۔ تو ہمیشہ اچھے کام کیجئے، کسی مشکل میں وہ آپ کے لیے نجات کی کشتی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے 60 میں مکافات عمل، ہر بستی کو مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو آسان جملے میں کہہ دیں، آج جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے کل وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی جو ہم نے بستیاں بنائی تھی اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا تھا اور کریں گے قیامت سے پہلے، یا ان کو عذاب دیں گے عذاب شدید، یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کو مجھے اس دنیا میں اپنے ہر ایکشن کا ریئیکشن فیس کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پھر آگے آئے 61 سے 65 میں، ایک بار پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، اور یہاں خاص طور پہ آپ کو ابلیس کی انسان دشمنی دکھے گی، کیسے وہ آدم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے اور انسان کو چیلنج کر رہے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ تو کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے، اسجدوا لمن خلقت طینا، یہاں نوٹ کیجئے گا رویہ، اللہ کے حکم کو سن کر عمل کرنے کی بجائے تنقید کرنا، کیا تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہتا ہے جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اور اگر آپ صرف ان چند آیتوں کو، یعنی پانچ چھ آیات ہیں، ون بائی ون کر کے لکھیں نا، تو اس میں آپ کو 8-10 شیطانی رویے دکھتے ہیں، شیطانک ٹرکس دکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ شیطان کا جو حملہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس نے کیا کہا کہ بخیلک، میں آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا۔ بخیلک کیا ہوتا ہے؟ تیز رفتار، شدید غصہ، شدید خوف، شدید جذباتی کیفیت میں مبتلا کر دینا، کمزوری کی حالت میں لے جانا۔ یعنی دو لفظ ان آیات میں آئے ہیں، شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کے بچوں کو بخیلک و رجلک، رجلک کے لفظ کو پہلے سمجھ لیں تو پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں، سست رفتار کے لیے آتا ہے سواری میں، شدید غفلت، شدید غم۔ کیا پتہ چلا کہ شیطان نے کیا اسی دن ڈے ون پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کی تھی کہ تو چاہے تو لانگ ٹرم پلان کر لے، شارٹ ٹرم پلان کر لے، آپ آدم کے بچوں کو جنت سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، بلکہ وشارک ہوں، شریک کر لے، کس کے اندر؟ فلم وال۔ شیطان ہمارے مالوں میں کیسے حصہ ڈال دیتا ہے؟ مثلا ہم بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتے ہیں، شیطانی کاموں میں اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شارکم فی الاولاد کی بات ہوئی، تو سب سے پہلی بات ہے کہ بچے کی پیدائش کو ہی ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں، ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آتا تو شیطان وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہ کرنا، یہ ان بچوں کے اندر شیطان کو حصہ دار بنانا ہے۔ پھر اگلی بات اس نے کہی تھی وعید ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو ان کو وعدے دے لے، اب یہ وعدے کیا تھے؟ فیصلوں میں شریک، آپ اپنے بچوں کے جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیسیزنس، اس میں بھی کئی دفعہ شیطان ہم سے غلط معاملے کرواتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، برائی کو خوش نما بنا کر دکھاتا ہے، اچھائی کو برا دکھا دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آپ جب یہ ساری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو ایک دم تو شیطان پہ بڑا غصہ آئے گا، اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو پلٹ کر پیچھے دیکھ لیں تو شیطان کیسے چیلنج کر رہا ہے آپ کو مجھے۔ اگر آج بھی آپ اور میں صرف ان آیات کا ترجمہ غور سے پڑھ لینا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دل نہیں کرتا شیطان سے بات کریں، کہاں کیا ہے اپنے بچے کو آپ شیطان کے۔ اور یہ ہیں وہ آیات جس کو پڑھنے کے بعد علماء کرام میں سے اکثریت کہتے ہیں حق کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز شیطانی آواز ہے، راگ رنگ گانا بجانا، جذبات کو بھڑکانے والی باتیں، ولگر ٹاک، گندے جوکس، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، آج کتنا ہی عام ہو گیا۔ اور شیطان کی یہ ساری باتیں پڑھ کر، اور خاص طور پہ پھر ان کے یہ ہمارے ساتھ جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلانز ہیں، उसने बनाए हुए हैं। एक बच्चे के पैदा होते ही वो पास आके बैठता है, और आपको पता है मरते वक्त भी शैतान पास आके बैठा होता है कि कहीं कलमा पढ़ लो और मैं तुम्हें बचा लूँगा और ये वो। तो आज हमें कितना सोच के अपने माल इस्तेमाल करने हैं, कितना सोच के हमें अपनी औलादों की तरबियत करनी है। हम अपने कीमती बच्चों को ऐसी जगहों और ऐसे स्कूलों और ऐसी जगहों में बिठा कर फारिग होकर बैठ जाएं जहाँ पता नहीं उनकी सोचें बदली जा रही हैं। हैरत की बात नहीं है कि हमारा सोना चांदी तो बैंकों में रखा रहे, लॉकर्स की नज़र हो, और हमारी इतनी कीमती औलाद जो वो बाहर बैठी हो। तो लिहाजा अब आगे आयत 66 से 69 में अल्लाह ताला के कुछ एहसानात और इंसानों की नाशुक्री का तذکرہ। अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि हमने औलाद जैसी नेमत की भी कदर नहीं की। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी कदर करें, लेकिन सवाल कीजिए क्या हम अपने बच्चों की कदर करते हैं, क्या हम अपने माल की कदर करते हैं? ये दो ही चीज़ें हैं जो आज हमारी बिल्कुल मिसप्लेस्ड हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हम उसकी नेमतों की कदर करें। फिर इस पोर्शन में अल्लाह ने कश्तियों की बात की, दरियाओं के अंदर जाते हो, फंस जाते हो, फिर जब अल्लाह चाहता है तो उस तूफ़ान को ख़त्म कर देता है। इकरमा बिन अबी जहल को जहन में ले आए, पीछे भी आयतें गुजरी थी। कई ऐसे लोग हैं जो जहाज़ में झटके लगते हैं तो कहते हैं ओ गॉड, जहाज़ ठीक हो जाता है तो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट ट्रस्ट इन गॉड। तो क्या पता चला कि दिन रात तुम अल्लाह की नेमतों में हो, अगर ना शुक्री करोगे तो तुम्हारी बात है। बड़े बड़े क्रूज़ जाते हैं समंदरों में, उसके अंदर जो गुनाह हो सकता है वो हो रहा होता है, जो ख़राबी होती है, क्योंकि पानी पे जाकर तो वैसे ही शैतान नाचने लग जाता है, शैतान रहता भी पानी के करीब है। तो हमेशा अपने लिए एक नियत रखिए, अल्लाह हमें पूरी दुनिया में घुमाए फिराए चलें फिरें, लेकिन कभी भी शैतान को राज़ी नहीं करना। फिर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया, ये आयत नंबर नोट कीजिए 70 है, वलकद करमना बनी आदम, यानी इंसान सबसे बड़ी मखलूक है, सारा जहाँ तेरे लिए और तू मेरे लिए। तो कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना कीजिए, आपको अल्लाह ने सबसे ऊंचा मुकाम दिया। फिर आयत 71-72 में सरकशी करने वाला रोज़े क़यामत अंधा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यौम नदुकुल्लू नासिम बी इमामिहिम, वो दिन जब हम हर एक को बुलाएंगे उसकी किताब या उसके इमाम के साथ। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, बस जो कोई दिया गया अपना नामे अमाल दाएं हाथ में, बस यही लोग हैं जो पढ़ेंगे अपनी किताब को और एक ज़र्रा बराबर जुल्म ना होगा। फतील धागे को कहते हैं, खजूर खोले ना तो गुठली के इर्द गिर्द एक छिलका सा होता है, कभी वो नरम गीला होता है और कभी बिल्कुल सूख जाता है। उसी के लिए यहाँ लफ्ज़ है कि धागे बराबर, खुश खजूर के अंदर वो छिलका बिल्कुल एक धागा एक डोरी बन चुका होता है, उसको फतील कहते हैं। मुराद है कि ज़रा भी तुम पे जुल्म नहीं होगा। हाँ, जो इस दुनिया में अंधा बना रहा, आखरत में भी हम उसको अंधा कर देंगे और बदतरीन रास्ते पे। तो आज सरकशी करते वक्त सोच लीजिए कि कल अगर आंखें ही चली गईं तो क्या होगा। फिर आयत 73-77 तक कुफार को दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, कुरान से है। आज भी ऐसे ही है, ये कुरान उनको अपनी मर्जियां करने नहीं देता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बहुत उस दौर में उनका चल रहा था मामला, उसी की तरफ इशारा है। बड़ी मुश्किल आयतें हैं ये, जब आप इसकी डेप्थ में तफसीर करते हैं एक एक लफ्ज़ पे घंटा घंटा बात होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ आप और मैं इतना समझ लें, कल का दौर था या आज का दौर है, और आने वाला दौर तो बड़ा ही शदीद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जितनी भी उंगलियाँ उठेंगी, असल में वो कुरान को ख़त्म करने और मिटाने की कोशिशें होंगी। फिर आयत 78-79 में 5 वक्त की नमाजों का इशारा है। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल्लैल, आप देखिए कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि इतनी जो आयतें हैं, 6,000+ आयतें हैं कुरान में, एक आयत में फजर जोहर असर मगरिब इशा होता, दूसरी आयत में फजर का ये वक्त इतने बजे शुरू इतने बजे ख़त्म, ये तरीका नहीं आया। वही बात याद रख लीजिए कि कुरान की डिक्शनरी हदीस है, यानी कुरान मुजमल है और हदीस मुफस्सल है। इसमें एक बात आई है, और वो क्या है, व मिनल लैली फतहज्जुद, और रात के वक्त तहज्जुद पढ़ो, नाफिलतल्लक, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा है। आप कह लें कि हम पे 5 नमाजें फ़र्ज हैं ना, तो नबी सल्लम पे 6 फ़र्ज थी। क्यों? असायबसक रब्बुक मकामम महमूदा, शायद उम्मीद है कि आपका रब आपको मुकामे महमूद पे मबूस करे। अब सवाल यह कि मुकाम महमूद क्या है, इसके बारे में हदीस ले लीजिए मुसनद अहमद की 13075। काब बिन मालिक इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा तो मैं और मेरी उम्मत एक बुलंद टीले पर होंगे, मेरा रब मुझे सब्ज़ रंग का लिबास पहनाएगा, फिर मुझे इजाज़त दी जाएगी और जैसे अल्लाह को मंजूर होगा मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। यही मुकाम महमूद है, यानी ऐसी खूबसूरत तारीफ़ अल्लाह के नबी उस वक़्त करेंगे कि जो आज आपको ख़ुद भी नहीं पता थी क्या अल्फाज है, यानी वही सिखाया जाएगा आपको। और एक दुआ जो अज़ान सुनकर मांगी जाती है उसमें भी यही लफ्ज़ आता है, और हम नबी सल्लम के लिए मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति मोहम्मद अल वसीलत वल फदीला वबअस्हु मकामम महमूद अल्लज़ी वअत्तहु। ए अल्लाह, जो इस मुकम्मल दुआ और कायम होने वाली नमाज का मालिक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और इनको मुकाम महमूद पे फ़ाइज़ फरमा जिसका आपने इनसे वादा फरमाया है। तो इसकी फजीलत है क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबी सल्लम की सिफारिश नसीब कराएंगे उसको। यहाँ आपने नोट किया कि हम अल्लाह के नबी के लिए वसीला मांग रहे हैं। वसीला क्या है? जन्नत का वो आला तरीन मुकाम जो सिर्फ़ एक हस्ती को मिलना है, और वह अल्लाह के नबी है। लोगों को गलती लगी, नबी के लिए वो मुकाम मांगने से की बजाय खुद नबी को वसीला बनाने लगे। तो ये छोटे छोटे फ़र्क जो हैं, ये कुरान को पढ़कर हदीस को सामने खोल लें तो अल्लाह की रहमत से ये छोटे छोटे फ़र्क जो हैं ये मिटने लगते हैं। फिर उसके बाद अब सूरत के एंड की तरफ हम बढ़ते हैं। चूँकि ये सूरत हिजरत के करीब के दौर में नाजिल हो रही थी तो दुआएँ सिखाई गईं, किसी भी जगह दाखिल होने और निकलने की दुआ, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वअख्रिजनी मुखरज सिदकिन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आप कह दीजिए कि मेरे रब दाखिल कर दे सिद्क की जगह पे और निकाल सिद्क का निकालना। आप किसी भी जगह जाते हैं तो किसी मकसद से जाते हैं ना, कोई बैंक में जाता है किसी काम पे जाएगा, आपके शौहर अपने काम पे जा रहे हैं, आप पढ़ने के लिए स्कूल में आ रही हैं, आप किसी बहुत ज़रूरी चीज़ को लेने के लिए किसी ग्रोसरी स्टोर पे गई, दिल में नियत क्या करें कि अल्लाह जिस मकसद के लिए जा रही हूँ जल्दी से मिल जाए, मुझे विंडो वॉचिंग नहीं करनी, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना, मुझे बिला वजह घर से निकल कर बाहर घूमने फिरने का कोई शौक़ नहीं है। तो खूबसूरत दुआ है। आगे आयत 81 में हिजरत गलबा दीन का आगाज़ है, वक़ुल जाल हक वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। ये आयत नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक पे थी जब मक्का फ़तह हुआ और आप बुतों को तोड़ रहे थे। फिर आयत 82 में कुरान मोमिनीन के लिए रहमत और शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, और हम कुरान में से नाजिल करते हैं वो जिसमें शिफा भी है और रहमत है मोमिनीन के लिए, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं खसारे में जालिम, यानी वला यजीदो, और किसी चीज़ में नहीं ज़्यादा होते जालिम मगर नुकसान में। यानी कुरान है तो रहमत और शिफा, लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ मोमिनीन को मिलेगा। क्या पता चला? हुआ शिफाउं व रहमा, कुरान मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। लेकिन इसके बरक्स वला यजीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जुल्म करने वाले कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक ही कुरान पढ़ा जा रहा होता है, किसी को फ़ायदा होता है किसी को नुकसान भी होता है। देखिए एक गोली होती है ना, किसी को उससे सेहत मिल जाती है तो दूसरे किसी को रिएक्शन हो जाता है, किसी दूसरे के लिए वो बिगाड़ का ज़रिया बनती है। और सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 2317, हज़रत आयशा से रिवायत है, अल्लाह के नबी इनके पास आए तो एक औरत इनका इलाज कर रही थी, यानी अल्लाह के नबी जब आए तो एक औरत हज़रत आयशा का इलाज कर रही थी या उनको दम कर रही थी, तो आपने फरमाया कि इसका इलाज अल्लाह की किताब के ज़रिए करो। अब ये कैसे किया जाए? तो ज़रा सा देखते हैं कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। बीमारियाँ या तो जिस्मानी होती हैं या रूहानी होती हैं या अख्लाकी होती हैं, कुछ माशरती बीमारियाँ हैं, कुछ जहनी बीमारियाँ और कुछ नफसानी बीमारियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इन सारी बीमारियों का इलाज कुरान में रखा है, इसलिए कि आप देखिए कि आप स्पिरिचुअली डाउन फील करते हैं, कुरान पढ़िए आपको ताकत मिलेगी। कुरान आपकी रूह की ग़िज़ा है, ये जुमला लिख लीजिए, मोमिन की रूह की ग़िज़ा कुरान है, कुछ और नहीं है। और अख़लाक कैसे संवरता है? आप सूरत हुजरात पढ़ लें। माशरा कैसे बेहतर हो जाएगा? आप सूरत नूर को पढ़ लीजिए। ذہنی بیماریاں جو ہیں الجھاؤ ہے جتنا ذہنوں میں اس وقت، اور اتنی یعنی کہہ لیجئے کہ گھبراہٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، آپ سورہ طٰہٰ پڑھ لیجئے. نفسانی بیماریاں ہیں تو آپ سورہ یوسف پڑھ لیجئے. ایک ایک چیز کا علاج یہ قرآن کرتا ہے، یعنی ایک ہی گولی ہر طرح کی بیماری کے علاج میں. آیت 83 سے 84 کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان کا عمل اس کے ضمیر کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں نا، آپ کے ضمیر کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ، ہم جب کسی بندے پہ انعام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. آپ سوچیے کیا خوشیوں میں ہمارا عمل ایسا نہیں ہو جاتا؟ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں خوشی کے موقع پہ، لیکن اللہ اور رسول اور فرشتوں کی تو ہمیں وہاں ضرورت ہی نہیں رہتی. تو آج سے اپنے لیے ایک عمل کی بات لکھیے کہ کیا میں خوشیوں میں رب کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق خوشی اور غم دونوں کے اندر، اس کو خوش کرنے کا یا ناراض کرنے کا؟ تو اب وہی کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک لو. دیکھیے، کوئی مجھے لاکھ اچھا کہے، اگر میرے میں کوئی خرابی ہے نا، سب سے زیادہ مجھے خود پتہ ہوگا. ہم پڑھیں گے سورت قیامت میں کہ بلی الانسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو القا معذیرہ. تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ وری، مت گھبرائیے. اگر آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ اچھے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے نا میں کیسی ہوں. اور کوئی آپ کو اچھا کہہ لے، سارے ہی کہنے لگ جائیں، تو آپ اپنا جائزہ خود لیجئے.